नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी पर बात करेंगे
जी।
और खास तौर पर इसके एक अध्याय पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। अध्याय का शीर्षक है शिक्षित महिलाएं अहंकार का त्याग करें
जी।
इस पूरी पुस्तक में ही वंदनीय माता जी ने समाज को बनाने में, उसको दिशा देने में नारी की क्या भूमिका है, इस पर बहुत गहराई से लिखा है। और ये जो अध्याय है ना, ये तो सीधे सीधे पढ़ी लिखी शिक्षित स्त्रियों से एक तरह का आवाहन करता है।
हाँ बिल्कुल,
कि भाई आप आगे आइए समाज के लिए और खासकर दूसरी नारियों के भले के लिए, अपने ज्ञान का, अपनी स्थिति का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए जरा समझते हैं इसे। शुरुआत में ही व्यापक नारी जागरण की बात हुई है और कहा गया है कि इसमें शिक्षित नारियों का योगदान बहुत जरूरी है। तो ये व्यापक नारी जागरण है क्या असल में, और ये जो शिक्षित स्त्रियां हैं इनसे क्या उम्मीद की जा रही है?
देखिए, व्यापक नारी जागरण का मतलब वंदनीय माता जी के लिए सिर्फ ये नहीं कि महिलाएं पढ़ना लिखना सीख जाएं या अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा जान ले। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से अंदर की चेतना का जागरण है।
अच्छा।
अपनी शक्ति को पहचानना, समाज में अपनी जगह और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। और इस अध्याय में, जैसा आपने कहा, खास आग्रह उन महिलाओं से है जो साधन संपन्न है, पढ़ी लिखी हैं, समाज में जिनकी एक पहचान है। उनसे वंदनीय माता जी कह रही हैं कि भाई जरा समय की जरूरत को समझो। अपने अंदर का जो अहंकार है ना, अहंकार मतलब ये भाव कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ या मुझे क्या लेना देना किसी से, इस भाव को छोड़ो,
अहंकार का त्याग।
हाँ
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो क्या ये सिर्फ मतलब कुछ पैसे दान करने या थोड़ा समय देने की बात है, या इसमें कुछ और भी शामिल है?
नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। वंदनीय माता जी ये तो कहती हैं कि हाँ, अपनी सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी करके जो पैसा या समय बचे उसे नारी कल्याण में लगाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सोच बदलना।
सोच बदलना।
हाँ, अहंकार छोड़ने का मतलब है कि आप खुद को दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करें, उनकी तकलीफ को समझें और मदद के लिए सच में आगे आएं। तो ये सिर्फ दान नहीं है, ये सहानुभूति है, ये सक्रिय भागीदारी है।
अच्छा, अध्याय में उन महिलाओं का भी जिक्र है जो ऊंचे पदों पर हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। उनके लिए क्या कोई खास भूमिका बताई गई है? ये बात थोड़ी दिलचस्प लगी कि कुछ प्रोफेशंस को अलग से पॉइंट आउट किया गया है।
हाँ बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि ये जो पद है ना, ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, ये प्रभाव डालने और संसाधन जुटाने के भी केंद्र है। जरा सोचिए।
सही बात है।
एक टीचर कितनी लड़कियों को प्रेरणा दे सकती है ना, एक डॉक्टर सेहत के साथ साथ कितनी जागरूकता फैला सकती है, एक अफसर नीतियों को बदल सकती है। तो वंदनीय माता जी का नजरिया ये है कि इन पदों पर जो महिलाएं हैं वो अपनी नौकरी तो करें ही, लेकिन साथ में समाज की जिम्मेदारी भी निभाएं। वो नारी संगठन और जागरण के कामों में लीड ले सकती हैं, अपने असर का इस्तेमाल उन बहनों को आगे लाने में कर सकती हैं जो शायद पीछे रह गई हैं।
अच्छा,
तो मतलब खास बात यह है कि आपकी जो शिक्षा है, आपका जो पद है, वो सिर्फ आपकी अपनी तरक्की के लिए ना हो, वो समाज के भले का, सामूहिक कल्याण का एक साधन बने, एक हथियार बने, इस पर जोर है।
लेकिन एक प्रैक्टिकल बात भी है, आजकल की महिलाएं अक्सर दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं, घर भी बाहर का काम भी। तो क्या पुस्तक में इस चुनौती को माना गया है कि भाई समय की कमी तो होती है?
हाँ हाँ बिल्कुल माना गया है। वंदनीय माता जी जमीनी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। अध्याय में ये बात मानी गई है कि समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर उसका हल भी बताया है।
क्या हल सुझाया है?
हल ये है कि आप शुरुआत अपने आसपास से ही करें, जहां आप काम करती हैं वहीं मौके तलाशें। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम ही शुरू किया जाए। और सबसे अहम बात, अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन महिलाओं का साथ लें जो शायद कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन जिनके मन में सेवा का भाव है, उनको साथ जोड़ें।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है।
हाँ, ये एक तरह से सबको साथ लेकर चलने वाला समावेशी नजरिया है। इसमें हर किसी की क्षमता का आदर है और हर किसी के लिए योगदान का मौका है।
तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि जो शिक्षा हमें मिली है, जो मुकाम हमने हासिल किया है, वो अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लाता है। उसको सिर्फ अपने फायदे तक ही सीमित ना रखें, बल्कि समाज में, खासकर दूसरी स्त्रियों की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें।
एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही। और इस कोशिश के बदले में जो मिलता है ना, उसको भी वंदनीय माता जी बहुत अहम मानती हैं। वो इसे सिर्फ सोशल वर्क नहीं कहती, वो इसे सेवा साधना कहती हैं।
सेवा साधना।
हाँ, मतलब जब आप बिना किसी स्वार्थ के अहंकार को पीछे रखकर सेवा करते हैं तो वो एक तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस बन जाती है और उससे जो अंदरूनी सुकून मिलता है, जो आत्मसंतोष मिलता है, समाज में जो इज्जत मिलती है, वो किसी भी दुनियावी चीज से कहीं बढ़कर है। ये उस सेवा का फल है जो सीधा आपकी आत्मा को तृप्त करता है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये अध्याय पढ़ी लिखी स्त्रियों के लिए एक तरह का आईना है जो उन्हें अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपनी ताकत और साधनों का इस्तेमाल दूसरी नारियों के उत्थान के लिए करने की प्रेरणा देता है और ये भी बताता है कि इस रास्ते पर चलकर उन्हें अंदरूनी शांति और खुशी भी मिलेगी।
बिल्कुल, ये शिक्षा को सिर्फ व्यक्तिगत कामयाबी से नहीं जोड़ता बल्कि उसे एक सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। ये याद दिलाता है कि हमारा ज्ञान, हमारी क्षमताएं सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो समाज के लिए भी है, खासकर उन स्त्रियों के लिए जिन्हें शायद उतने मौके नहीं मिल पाए।
यहाँ पर एक सवाल मन में उठता है, सोचने वाली बात है कि आज का समय तो बहुत तेजी से बदल रहा है, महिलाओं के लिए मौके भी नए हैं, चुनौतियां भी ज्यादा उलझी हुई हैं, तो ऐसे में शिक्षा, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और ये जो सामाजिक जिम्मेदारी की बात हम कर रहे हैं, इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आज की हर पढ़ी लिखी नारी को सोचना चाहिए।